ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय शिक्षा को गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी और प्रविधि मैत्री बनाना होगा, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का कथन। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए सत्ता गठबंधन की कार्यदल में सीट बंटवारे को लेकर हुआ विचार विमर्श। नेपाल में आज कोरोना के 815 नए मामले आए सामने, संक्रमित 5 की हुई मौत। और भारत के बांदा के जमुना नदी में पलटी नाव, 3 की मौत, 17 लोग हुए लापता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी और प्रविधि मैत्री बनाने की जरूरत है। नेपाल प्राध्यापक संघ के 60वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि देश के भविष्य के साथ जुड़ी विश्वविद्यालयों की पठन पाठन को अनुसंधानात्मक, जीवनोपयोगी और रोजगारमूलक बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि प्राध्यापकों के हक हित का संरक्षण और वृत्ति विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने देश की समृद्धि के लिए सरकार को हाथ बटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की समस्या और चुनौतियों को आपसी समन्वय और सहकार्य मार्फत समाधान करना होगा। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने कहा कि उच्च शिक्षा सुधार में प्राध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सत्ता गठबंधन ने मार्ग शीर्ष 4 गते होने वाले प्रतिनिधि और प्रदेश सभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर गठित कार्यदल की आज हुई बैठक में चुनाव में सीट बंटवारे के ढांचे के विषय में विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई कार्यदल की बैठक में दलों के बीच सीट बंटवारे के ढांचे के विषय में सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। यह जानकारी कार्यदल के सदस्य एवं माओवादी केन्द्र के नेता देव प्रसाद गुरुंग ने दी। आज की बैठक में चर्चा किए गए विषयों में अपनी अपनी पार्टी के भीतर भी विचार विमर्श करने और आने वाली बैठक में निष्कर्ष तक पहुंचने की बात हुई, ये जानकारी नेता गुरुंग ने दी। बता दें कि कार्यदल की बैठक इसी श्रावण 30 गते सोमवार के लिए बुलाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि प्रकृति को संतुलित रखने के लिए जीवों और प्राणियों के घरों को बचाना होगा। रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मिड टाउन द्वारा आज ललितपुर में आयोजित सर्पदंश रोकथाम के लिए संचार अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव ने ये बात कही। विपन्न व मजदूर किसान बस्ती में सांप के काटने से कई मासूम की जाने जाती है। बताते हुए उन्होंने कहा कि सर्पदंश के विषय में लोगों में चेतना फैलाने की जरूरत है। इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के निर्देशक डॉ चुमनलाल दास ने कहा कि विभिन्न संघ संस्थाओं के सहकार्य में सरकार कई जगहों में सर्पदंश उपचार केंद्र तथा जनशक्ति बढ़ाने का काम कर रही है। नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति ने कल ही ऋषि तर्पणी, रक्षाबंधन और गाय जात्रा त्योहार होने की जानकारी दी है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की महिला तथा सामाजिक समिति ने आदिवासी जनजातियों के हक अधिकार का संरक्षण और प्रवर्धन करने के लिए आवश्यक अध्ययन अभिलेखीकरण करने का निर्देश किया। समिति की आज सिंहदरबार में हुई बैठक में समिति के सभापति नीरू देवी पाल ने सरकार को ऐसा निर्देश दिया। समिति की बैठक में आदिवासी जनजाति आयोग के प्रतिवेदन के ऊपर विचार विमर्श हुआ था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। आज देशभर में कोरोना के 815 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 476 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं आज 5 संक्रमितों की मौत हो गई, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बता दें कि देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5869 हो गई है। तिब्बत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तातो पानी नाके को बंद किया गया है। नाका बंद होने के बाद यानी कि कल से चीन से सामान आयात नहीं हो पाए हैं। ये जानकारी तातो पानी सुखा बंदरगाह भंसार कार्यालय के प्रमुख नारद गौतम ने दी। बता दें कि उस नाके से हर रोज 4 से 8 कंटेनर चीनियाई सामग्री नेपाल आयाती होती थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के बांदा से फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई। नाव में 35 लोग सवार थे। इसमें 17 लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 15 लोग तैरकर बाहर आ गए। अब तक 3 शव बरामद हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नाव पर सवार होकर मायके जा रही थी। पानी का बहाव तेज होने से पतवार टूट गई, जिससे नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। गोताखोरों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 10 से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। नाव पर 20 लोगों के बैठने की क्षमता थी, जबकि 35 लोगों के अलावा कुछ मोटरसाइकिल भी लदी थी। नाव पलटने की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी डीआईजी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन पर्व पर समगरा गांव से महिलाएं व लोग मरका घाट पर पहुंचे थे। यमुना नदी पार करके फतेहपुर जिले के असोथर घाट जाने के लिए नाव पर 35 लोग सवार हुए थे। यमुना नदी के बीच धार में पहुंचते ही नाव असंतुलित होकर पलट गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज हुए एक बम धमाके में प्रमुख तालिबानी नेता की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह बेहद घातक हमला था। अधिकारियों ने मारे गए तालिबानी नेता की पहचान रहीमुल्ला हक्कानी के रूप में की है। रहीमुल्ला हक्कानी ने पाकिस्तान में दारुल उलूम हक्कानिया से स्नातक किया था, जो लंबे समय से तालिबान से जुड़ा एक इस्लामी विश्वविद्यालय है। तालिबान के उप बिलाल करीमी ने रहीमुल्ला हक्कानी की मौत को स्वीकार करते हुए उन्हें महान व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि हक्कानी दुश्मन के क्रूर हमले का शिकार हुए हैं। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। अभी तक अफगानिस्तान से इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकी तालिबान और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। तालिबान के आने के बाद इन हमलों में बढ़ोतरी आई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्वविद्यालय शिक्षा को गुणस्तरीय जीवनोपयोगी और प्रविधि मैत्री बनाना होगा, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का कथन। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए सत्ता गठबंधन की कार्यदल में सीट बंटवारे को लेकर हुआ विचार विमर्श। नेपाल में आज कोरोना के 815 नए मामले आए सामने, संक्रमित 5 की हुई मौत। और भारत के बांदा के जमुना नदी में पलटी नाव, 3 की मौत, 17 लोग हुए लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।